पांडित्य प्रदर्शन परंपरा का रूढ़ अंश बिहारी में एक प्रकार से और मिलता है। निजी जानकारी और पांडित्य प्रदर्शन के रूप में ऐतिहासिक चेतना के लिए यह आवश्यक है कि परंपरा में रक्षित ज्ञान विज्ञान की अच्छी जानकारी प्राप्त की जाए, पर उसका उपयोग निजी जानकारी के प्रदर्शन के रूप में नहीं होना चाहिए। यह पांडित्य और जानकारी जब तक चेतनागत नैरंतर्य का अनिवार्य अंग नहीं बन जाती, तब तक कवि की कारित्री प्रतिभा उसका काव्योचित उपयोग नहीं कर सकती। बिहारी के कुछ दोहों के आधार पर उन्हें चोटी का गणितज्ञ वैद्य या ज्योतिषी मान लेना अर्थ का अनर्थ कर बैठना है। यह बात अब इतनी घिस पिट गई है कि उसका उल्लेख भी बासीपन की गंध से खाली नहीं है। कविता में जिस निर्वैयक्तिकता की चर्चा की जाती है, उसका मतलब केवल निजी अनुभूतियों से पलायन नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व से भी पलायन है। निजी जानकारियां या पांडित्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंग है, इसलिए सच्चे कवि को, लोक हृदय की पहचान करने वाले कवि को उससे पलायित होना होगा। इस प्रकार का पांडित्य प्रदर्शन साहित्य के किसी भी क्षेत्र में अभिनंदनीय नहीं कहा जा सकता। हिंदी के कुछ वे उपन्यास जिनमें मनोविश्लेषण शास्त्र के सिद्धांतों का अथवा इतिहास के तथ्यों का बाहुल्य हो गया है, उच्च कोट की कृतियों में नहीं गिने जाते। तुलसीदास के प्रकृति चित्रण में ज्ञानमूलक अंश अप्रस्तुत के रूप में जुड़ गया है, वह काव्य सौंदर्य को विकृत कर देता है। कवि को अपनी निजी विशेषताओं का चित्रण साहित्य के शोभन उपकरण नहीं माना जा सकता। इस तरह के अकाव्योचित अंश बिहारी में देखे जा सकते हैं। एक, कहत सबय बेंदी दिए आंक दस गुनो होत, ती लीलार बेंदी दिए अगणित बढ़त उदो। मैं लखि नारी ज्ञान कर राख्यो निर्धारय, वही रोग निदान वही वैद औषधि वहय। तीन, तीय तिथि तरुण किशोर वय पुण्य काल समदोन, काहू पुण्यनि पाइयत वयस संधि संक्रोन। चार, सन कज्जल चख झख लगन उपजेव सुदिन स्नेह, क्यों नृपति हुय भोग वय लहि सुदेश सब देह। उपर्युक्त उद्धरणों में गणित वैद्यक और ज्योतिष के जिन मामूली सिद्धांतों का सहारा लिया गया है, उनका साध्य कुछ दूसरा ही है। पहले दोहे में कवि का मुख्य अभिप्राय बिंदी लगाने के कारण नायिका की बढ़ी हुई शोभा का वर्णन करना है। दूसरे में नायक के प्रति नायिका के प्रेम की व्यंजना उसका अभिप्रेत है। तीसरे में वयह संधिगत सौंदर्य ही उनका मुख्य वर्ण्य है। चौथे में सुंदर शरीर के भोग की सलाह दी गई है। यहाँ पर साधन स्वयं साध्य हो गए हैं, इसलिए समस्त दोहे काव्य सौंदर्य से अछूते रह गए हैं और पांडित्य प्रदर्शन उभर कर सामने आ गया है। कविता का संबंध पांडित्य से नहीं, संवेदना से है। परंपरा बनाम मौलिकता, ये सब परंपरागत वे रूढ़ियाँ हैं जिनके कारण बिहारी का काव्य त्रुटिपूर्ण हो गया है, पर बिहारी की ऐतिहासिक चेतना के वे पक्ष भी हैं जो उनके काव्य को पूर्ववर्ती काव्य परंपरा की अपेक्षा अधिक रसार्द्र और चमत्कार क्षम बनाने में समर्थ हैं। इस चेतना को ठीक से न समझने के कारण जो लोग अर्थापहरण या रूपांतरण दिखाने के लिए आलोच्य कवि की रचनाओं और पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं में साम्य खोजते फिरते हैं, उनकी समझ को क्या कहा जाए। गोस्वामी तुलसीदास की नाना पुराण निगमागम सम्मतम पंक्ति को ले उड़ने वाले लोगों ने मानस में आने वाले रूपांतरणों का लंबा चौड़ा लेख प्रस्तुत किया है। बिहारी भी इस इल्जाम से बरी नहीं है। परंपरा को छोड़कर मौलिकता का कोई अर्थ नहीं है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक वस्तु विशेष को मौलिकता की संज्ञा दी है। पुरानी बातों में नयापन ले आना ही मौलिकता है। आनंद वर्धनाचार्य का कहना है, दृष्टपूर्वा अपि ह्यर्थाः काव्ये रस परिग्रहात सर्वे नवा युवा भांति मधुमास युद्रुमा। पहले के अर्थों को रस संचार द्वारा नवीन बना देने में ही मौलिकता है, जैसे मधुमास पुराने वृक्षों को नया बना देता है। टी एस इलियट उसी तथ्य को दूसरे शब्दों में कहता है, इट इन्वॉल्व्स अ गुड डील व्हिच कैन बी कॉल्ड टैबू, दैट दिस रोड इज यूज्ड इन अवर टाइम इन एन एक्सक्लूसिवली डिरोगेटरी senses is to me a curiosity of some significance. We become conscious of these items or conscious of their importance usually only after they have begun to fall into desuetude, D-E-S-U-E-T-U-D-E. As we are aware of the leaves of a tree when the autumn wind begins to blow them off, when they have separately ceased, C-E-S-E-D, to be vital. Energy may be wanted at that point in a frantic endeavor to collect the leaves as they fall and come them onto the branches. But the sound tree will put forth new leaves, and the dry tree should be put to the axe. We are always in danger in clinging to an old tradition or attempting to re-establish one of confusing the vital and the unessential, the real and the sentimental. मधुमास में जीवन तो वृक्ष अपने जीर्ण पत्तों को झाड़ देते हैं, उनके स्थान पर लाल लाल नए कोंपल उगने में समर्थ होते हैं। मृत पत्रों को डालों से चिपका देना परंपरा के मृत तत्वों को चिपका देना है, उन्हें पुनः स्थापित करने का प्रयास है। पर वास्तविक कवि जीवंत और अजीवंत, वास्तविक और भावुकता परक तत्वों की पहचान में दक्ष होता है। इस प्रकार की दक्षता प्राप्त करना ऐतिहासिक चेतना प्राप्त करना है। बिहारी में इसकी बहुत कमी नहीं है। यह दूसरी बात है कि स्वयं आलोचक इन तत्वों को न पहचान कर बिहारी के मध्य थोपते। सत्संगों की परंपरा में जो पहला ग्रंथ दिखाई देता है वह है हाल की गाथा सप्तशती। इस परंपरा का दूसरा विशिष्ट ग्रंथ है अमरूक शतक और तीसरा गोवर्धन की आर्या सप्तशती। यों तो इस परंपरा में छोटे मोटे बहुत से प्रयास हुए हैं। बिहारी ने इन तीनों ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य अनेक सूत्रों का भी अनुशीलन किया होगा, ऐसा उनकी रचना से प्रकट होता है, किंतु अनुशीलन का तात्पर्य रूपांतर नहीं है। उन्होंने पूर्ववर्ती ग्रंथों से बहुत कुछ लिया है पर उन्हें अपना बना कर लिया है, उन्हें अपनी प्रतिभा के स्पर्श से नया बना दिया है। गाथा का एक पद देखिए, अव्यो टुक्कर आरक पूर्णो वितंति करेश गणमास अजबिण होंति सरला बेणी तरंगिणो चिवरा अवो दुष्कर कारक पुनरपि चिंताम करोश गमनस्य अद्यापि न भवन्ति सरला वेण्यास्तरंगिणश चिकुरा। संस्कृत रूपांतर, अर्थात हे दुष्कर व्यवहार करने वाले, नायिका के केश जो तुम्हारे प्रवास में रहने पर नहीं बांधे जा सके, अभी तक उलझे हुए हैं, वे सीधे नहीं हो पाए और तुम पुनः प्रवास की चिंता करने लगे। अब सत्सई का एक दोहा देखिए, अजवन आए सहज रंग बिरह दुबरे गात अब ही कहा चलायत ललन चलन की बात। इन पद्यों पर पंडित पद्म सिंह शर्मा की टिप्पणी है, गाथा का भाव है कि वाह तुम भी कोई अजीब हो, फिर तुम्हें जाने की सूझी, यह क्या गजब करने लगे हो, अभी तो बेड़ी बांधने से प्रवास विरह में पतिव्रता के धर्मानुरोध के कारण गुलझट पड़े केश भी सुलझ कर सीधे नहीं हो पाए। निस्संदेह गाथा अपने ढंग से बहुत ही उत्कृष्ट है, गाथाकार ने किसी को कुछ कहने की गुंजाइश नहीं छोड़ी। अद्यापि न भवन्ति सरला तरंगिणश चिकुरा, बात बहुत ही साफ और सीधी है पर तो भी चमत्कार से खाली नहीं, इसका बांकपन चित्त में चुभता है, बहुत ही मधुर बात है। पर बिहारी लाल भी तो एक ही काइयां ठहरे, वह कब चूकने वाले हैं, पहलू बदल कर मजमून तो साफ ले ही उड़े। अजब न आए सहज रंग बिरह दुबरे गात, वाह उस्ताद क्या कहने हैं, क्या सफाई खेली है, काया ही पल भर में कोई पहचान सकता है। वहां गाथा में केवल गुलझट पड़े केश ही थे, यहाँ बिरह दुबरे गात है। केशों में सरलता आने की अपेक्षा दुबरे गात में सहज रंग का वापस आना कहीं अधिक वांछनीय और महत्वपूर्ण कार्य समझा जा सकता है। फिर अब ही कहा चलाइयत ललन चलन की बात में कितना माधुर्य है, छेकानुप्रास का कितना अच्छा है। इसी दोहे के संबंध में बिहारी और उनका साहित्य में कहा गया है कि गाथा के रूपांतर के अतिरिक्त यह कुछ भी नहीं है। अपनी प्रशंसात्मक आलोचना के बावजूद मानना होगा कि न जाने या अनजाने शर्मा जी को ऐतिहासिक चेतना की अधिक परख है। अपनी टिप्पणी के अंत में बिहारी की विशेषता को पकड़ते पकड़ते वे रह गए हैं, पर इसे गाथा का रूपांतर मात्र मान लेने में औचित्य नहीं। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर पता लगेगा कि गाथाकार ने परंपरा की रूढ़ को ही प्रश्रय दिया है। प्री के वियोग में केशों का प्रसाधन न करना सत्य होने पर भी रूढ़ ही है, किंतु बात जिस ढंग से कही गई है वह चमत्कारिक अवश्य है, लेकिन बिहारी के उपर्युक्त दोहे में रूढ़ का सहारा नहीं लिया गया है। अतः उसमें जो ताजगी और प्रभावोत्पादकता है वह गाथा में नहीं है। केशों का प्रसाधन मानसिक व्यापार से संबद्ध होने पर भी एक बाह्य व्यापार है, पर शरीर के दुर्बल और उसके विवरण का सीधा संबंध मानसिक व्यापारों से है जो मन पर सीधे चोट पहुंचाते हैं। गाथाकार की अपेक्षा बिहारी जहां तक उपर्युक्त दोहे का संबंध है पाठकों से अधिक व्यापक मानसिक संगठन की मांग कर, इसलिए बिहारी की व्यंजना अधिक गंभीर और संवेदनापूर्ण बन गई है। गाथा का एक सूरत पीड़िता का चित्र देखिए। सहई सहई ती तह तेण रामिया सुर अदुपिय थेण पम्मा असिरी साई वजह से चाई अंगाई सहते सहते इति तथा तेन रमिता सुरत दुर्विदक थेन प्रमलाण श्री शाणीव यथास्या जातन्यंगान। संस्कृत रूपांतर। बिहारी का दोहा यों है, यों दल मलियत दीर्दई दई कुसुम से गात कर धर देखो धर हरा अजव न उरको जात। शर्मा जी तो इतना ही कहकर रह गए कि इस प्रकार बिहारी लाल जी इस मैदान में गाथाकार और केशवदास से बहुत आगे बढ़ गए। क्या अच्छा संस्कार किया है, मजमून छीन लिया है। उन्होंने संस्कार की बात स्वीकार की है पर संस्कार के स्वरूप की चर्चा नहीं की है, किंतु बिहारी और उनका साहित्य में उन पद्यों पर की गई टिप्पणी देखिए। इस भाव को बिहारी ने ज्यों त्यों अपनाया है। सुरत दुर्विदग्ध और निर्दयी शब्द एक से वजन के हैं। दोहे में सामान्य कुसुम द्वारा नायिका के अंगों का सौकुमार्य प्रकट किया गया है, किंतु गाथाकार ने शीर्ष पुष्प का प्रयोग किया है जो कदाचित पुष्पों में कोमलतम होता है। कोष्ठ में महाकवि कालिदास ने शीर्ष कुसुम को ही कोमलता का प्रतीक प्रायः माना है। कोष्ठबंद। दोहाकार ने दलमलियत कहकर अंगों के अत्यंत पीड़न का अभिधा द्वारा उल्लेख किया है। गाथाकार ने उपमान शीर्ष के साथ म्लान विशेषण जोड़कर उनकी व्यंजना की है। दोहे में उर का धरधरा सुरतजन्य आयासाधिक्य का सूचक है तो गाथा में सहते सहते विपसा सूरत की दीर्घता का द्योतक है। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा से मैं अपनी असहमत प्रकट करते हुए कहना चाहूँगा कि किसी भी भाव को दूसरे श्रेष्ठ कवि द्वारा ज्यों का त्यों अपनाना असंभव है। उपर्युक्त टिप्पणी में स्पष्टतः गाथाकार को कई अंशों में बिहारी से श्रेष्ठ ठहराया गया है। ऐसी स्थिति में भला बिहारी गाथा का भाव ज्यों का त्यों कैसे अपना सकते हैं। उससे यह भी प्रकट होता है कि शीर्ष कुसुम को जो सुकुमारता का प्रतीक माना गया है नायिका के सौंदर्य के लिए अप्रस्तुत के रूप में ले आया गया है। म्लान विशेषण से उसका काव्य सौंदर्य और भी बढ़ गया है। आरंभ में यह भी कहा गया है कि निर्दयी और सूरत विदग्ध एक सी वजन के हैं। निर्दयी और सूरत विदग्ध एक कुष्ठ में एक से ही सही। कुष्ठबंध। कैसे माने जा सकते हैं। विदग्ध में जो चतुरता क्रीड़ापरकता और नागरता के भाव सन्निहित हैं वे निर्दयी में तो आने से रहे। निर्दयी की व्यंजना दोहरी है। एक ओर तो इससे नायिका के प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट की गई है, दूसरी ओर नायक को उसकी कठोरता के कारण उपालम्ब सा दिया गया है। शीर्ष कुसुम का कुम्हला जाना और बात है तथा किसी भी पुष्प को हाथों से दल मल कर मलिन बना देना और बात। केवल शास्त्र विहित प्रतीक रख देने से कोई काव्य श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। बिहारी ने यथार्थ को अधिक निकट से पकड़ा है। गाथा की पहली पंक्ति उतनी व्यंजक नहीं है जितनी बिहारी की दूसरी पंक्ति। अमरु शतक का एक अति प्रसिद्ध श्लोक देखिए, शून्यम वास गृहम विलोक्य शयनादुत्थाय किंचच्छनै निद्रा व्याज मुपागतस्य सुचिरम निर्वण्य पत्युर्मुखम विश्रब्धम परिचुम्ब्य जात पुलकामालोक्य गंडस्थलिम लज्जान नम्र मुखी प्रियेण हस्ता बाला चिरम चुंबिता। कुछ इसी तरह का मिलता जुलता भाव बिहारी ने अपने निम्नलिखित दोहे में प्रकट किया है। मैं मिसहा सोयव समझ मुह चुम्यो ढिक जाय हस्यव खिस्यानी गर गहो रही गरें लपटाए। पंडित पद्म सिंह शर्मा ने अनेक तरीके से बिहारी की प्रशंसा की है, किंतु कौन अच्छा है कौन कम अच्छा यह नहीं कहा जा सकता। अभिव्यक्त भावों में बहुत समानता होने पर भी दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से काफी दूर तक सहमत हुआ जा सकता है कि रस सिद्ध कवि बिहारी में अथवा स्वच्छंद कवि घन आनंद आदि में पिष्ट पेषण या चर्वित चर्वण नहीं है। श्रेष्ठ कवियों में चर्वित चर्वण हो ही नहीं सकता, क्योंकि वे पुरानी उक्तियों को नवीन बना देने में सर्वथा समर्थ होते हैं। अमरु शतक और बिहारी सत्सई के एक एक पद्य को लीजिए, याता किं न मिलन्ति सुंदर पुनश्चिंता त्वया मत्कृते नो कार्या नितराम कृशास कथयतेवं सवाष्पे मयि लज्जा मंथर तारकेण निपतत्पीताशूणां चक्षुषा दृष्ट्वा मा हस्तेन भामिमरणोत्साहस्तया सूचितः। लोपसूचक चिन्ह, बिलखी डफ कौहें चखनि तियलखि गवन बराय प्रिय गहबरी आए गरें राखी करें लगाए। अमरु का नायक अपने सखा से कहता है, मैंने यात्रा के समय प्रिय से कहा कि तू चिंता मत कर, क्या जाने वाले पुनः मिलते नहीं, तू तो यूं ही दुबली है। कहते कहते मेरी आंखें भर गई, लज्जा युक्त मंथर तारा वाली आंखों के पतनोन्मुख आंसुओं को रोक कर उसने अपने अमंगल सूचक मरण की सूचना दी। मैंने अपना गमन रोक दिया, पर बिहारी ने अपने दोहे की लोक सीमा से उसी भाव को नए ढंग से कहा है। निश्चय ही अनुभावों के सहारे बिहारी ने भावों को काफी गंभीर बना दिया है। आर्या सप्तश्रुति के भावों की छाया भी बिहारी के दोहों में मिलेगी, पर उससे बिहारी की मौलिकता कुंठित नहीं हुई है। भ्रामम भ्रामम स्थितया स्नेहे तव पयस्तत्र तत्रैव आवर्त पतित नौकायित मनया विनय मपनीय गोवर्धन। फिर चित उत ही रहत टूटी लाज की लाव अंग अंग छवि झौर में भयो भौर की नाव। सिद्ध हेमचंद्र का एक दुहा देखिए, भमरा एथु भी लिम्ब डई केवि दियरहडा विलम्ब घण पत्तलु छाया बहुलु फुल्लै जाय कयम्ब। हे भौरे, सघन पत्र और छाया बहुल कदम्ब जब तक नहीं फूल जाता तब तक यहीं ठहर। इससे मिलता जुलता बिहारी का दोहा है, इही आस अटकेव रहे अल गुलाब के मूल वही हैं बहुर बसंत ऋतु इन डारन वय फूल। इनकी अलग अलग विशेषताओं को देखते हुए को बड़ छोट कहत बड़ दोषु की कल्पना जागृत होती है। सिद्ध हेमचंद्र ने बसंत का नाम नहीं लिया है, इससे उसकी व्यंजना अधिक बढ़ गई है, पर इससे बिहारी की अपनी मौलिकता में कमी नहीं आई है। जिन प्राकृत संस्कृत और अपभ्रंश के काव्यों का उल्लेख किया गया है उनसे बिहारी का प्रभावित होना स्वाभाविक है, क्योंकि बिहारी सीधे उस परंपरा की अगली कड़ी हैं। ये हिंदी के पूर्ववर्ती कवियों से भी प्रभावित हैं, मुख्यतः केशव सेनापति और सुंदर से। कहूँ वनमाल कहूँ गुंजन की माल कहूँ संग सखा ग्वाल ऐसे हाल भूल गए हैं कहूँ मोर चंद्रिका कहूँ लकुट पीतपट मुरली मुकुट कहूँ न्यारे डारी दए हैं कुंडल अडोल कहीं सुंदर न बोले बोल लोचन अलोल मनो कहूँ हरि लय हैं घूंघट की वोट हो के चितयो की चौटी करी लालन तो लौट पौट तब ही ते भय हैं। सुंदर। कहा लड़ते दृक करे परे लाल बेहाल, कहूँ मुरली कहूँ पीत पटु कहूँ मुकुट बनमाल। बिहारी। ताही समय औचक ही काहू आनी पाती दीन, देखत ही सेनापति पाई प्रीतिमति की, माथे ले चढ़ाई दो उद्रिगनी लगाई चूमी, छाती लपटाई राखी पाती प्राणपति की। सेनापति। करलय चूम चढ़ाई सिर उर लगाई भुज भेंट, लही पाती पियकी लखती बाँचत धरती समेट। बिहारी। यहाँ पर कुछ तुलनात्मक पद्यों को उपस्थित करने का मेरा अभिप्राय केवल इतना ही था कि बिहारी ने अपने पूर्ववर्ती कवियों के भावों को अपने ढंग से अपनाया जरूर है, किंतु वे या तो प्रतिबिंब कल्प हैं या परिकर बंध की भिन्नता के कारण प्रवेश सदृश। ऐसा करना किसी तरह का अपराध नहीं माना जा सकता, प्रायः सभी कवियों ने ऐसा किया है, पर शर्त यह है कि ऐसा करने में पुनरावर्तन न हो, पिष्ट पेषण न हो। यह ऐतिहासिक चेतना का विशिष्ट और अपरिहार्य अंग है। इस सिलसिले में टीएस इलियट के नाम से यदि किसी को चिढ़ हो तो वह शौक से आनंदवर्धनाचार्य को याद कर सकता है। ता एव पदविन्यासा ता एवार्थ विभूतयः तथापि नव्यं भवति काव्यं ग्रथन कौशलात्।